ಗುರುವೇನ್ ಗೌರಾಂಗ ಶ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವಂ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುತೀರೈ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ದಸಮ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಠವಾ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ನಂಬರ್ 25 ಇನ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ್ ಹೇ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಕಾ ದರ್ಶನ್. तो सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिएगा. श्रृंगी अग्नि दमश्री असी जला द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परो अस्ति चलो स्वसुत्तौ निषेधुं ग्रहाग्रियाणि कर्तुमपि यत्र न तत् जन ಜನನ ಯು ಸೇಕಟೆ ಅಪ್ತು ಅಲಂ ಮನಸ ಅನವಸ್ತಾಂ ಶೃಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ದಂ ಶ್ರೀ ಅಸಿ ಜಲ ದ್ವಿಜ ಕಥಾಭ್ಯ ಶೃಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ದಂ ಶ್ರೀ ಅಸಿ ಜಲ ದ್ವಿಜ ಕಂಟಕ್ಯಭ್ಯ ಶೃಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ದಂ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ದಂ ಶ್ರೀ ಅಸಿ ಜಲ ದ್ವಿಜ ಕಟಂಕ್ಯಭ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪರೋತ್ ಅತಿ ಜಲೋ ಸ್ವಸುತೋ ನಿಷೇಧುಂ ಕ್ರೀಡಾ ಪರೋ ಅತಿ ಜಲೋ ಸ್ವಸುತೋ ನಿಷೇಧುಂ ಗೃಹಾನಿ ಕರ್ತುಂ ಅಪಿ ಯತ್ರ ನ ತಚ್ ಜನ ಜನಯೋ ಗೃಹಾನಿ ಕರ್ತುಂ ಅಪಿ ಯತ್ರ ನ ತಜ ಜನಯೋ ಸೇಕಟ್ ಅಪ್ತೂರ್ ಅಲಂ ಮನಸ್ಸೋ ಅನವಸ್ಥಂ ಸೇಕಾಟ್ ಅಪ್ತೂರಲಂ ಮನಸ್ಸೋ ಅನವಸ್ಥಾಂ ಶೃಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ದಂ ಶ್ರೀಯಸಿ ಜಲದ್ವಿಜ ಕಟಂಕ್ಯಭ್ಯ श्रृंगी अग्नि दमश्रीयसी जल द्विज कठक्यभ्य क्रीड़ा परो अति जलो सुतो निषेदुम् क्रीड़ा परो अति चलो स्वसुतो निषेदुम् गृहानि कर्तुमपि यत्र नत्त च जनयु गृहानि कर्तुमपि यत्र नत्त च जनयु सेकात अप्तूर अलम मनस्सो अनवस्थाम् सेकात अप्तूर अलम मनस्सो अनवस्थाम् बोलिए शब्दार्थ इस प्रकार है श्रृंगी गाय अग्नि आग दंष्ट्री बंदर तथा कुत्ते, असी तलवार, जल पानी, द्विज पक्षी, कंटके भ्य तथा काटों के साथ, कीड़ा परो अति चलो, दोनों बच्चे खेल में व्यस्त तथा अतीव चंचल, स्वसुतो अपने दोनों पुत्रों को निषेधुम रोकने के लिए, गृहाणी घर के कामकाज कर्तुम अपि करके, यत्र जब न नहीं तत जनायो, उनकी माताएं रोहिणी तथा यशोदा से कटते समर्थ आप तू प्राप्त किया अलम निसंदेह मनसा मन का अनवस्थाम संतुलन। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों के शिंग वाली गायों से अग्नि से पंजे तथा दांत वाले पशुओं यथा बंदरों कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से जमीन पर रखी तलवार तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती तो वे सदा चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण की यह सारी लीलाएं तथा माताओं द्वारा प्रदर्शित खुशियां दिव्य है, उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही तरह चिंता रोधन तथा अन्य भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु उनकी यथार्था दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी यह जगत अनुकृति ही है। इसलिए माता यशोदा तथा रोहिणी माता को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। होम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री उदपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहां श्रीमद् भागवतम के इन दशम स्कंद में जहां पर कृष्ण की लीला की चर्चा आ रही है, तो वाकई ऐसे कहा गया है श्रीमद् भागवतम जो प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक भगवान के दिव्य वपु के साथ तुलना किया गया है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं ग्रंथ के रूप में तो उसे कहा गया है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो वैसे भगवान इन 12वें स्कंद को भगवान के दिव्य वपु के साथ तुलना किया गया है, जो कि प्रथम जो दो स्कंद है, ये दो स्कंद जो कि चरण के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि ये इसमें पूरे भागवतम का न्यू इसमें हमें प्राप्त होता है, एक बेसिक फंडामेंटल इसके अंदर दिखाई पड़ता है। तो प्रथम का दो स्कंद जो है भगवान के चरण के साथ तुलना किया गया, तीसरा स्कंद जो भगवान के घुटने के साथ तुलना किया गया है, और चौथा स्कंद भगवान के कमर के साथ तुलना किया गया है, और पांचवा स्कंद जिसके अंदर ऋषभदेव का जो दिव्य ज्ञान का वर्णन है वो पेट के साथ तुलना किया गया है। और पांचवें स्कंद में भी आप देखोगे अनेक अनेक ब्रह्मांड के विषय में चर्चा आती है, अलग अलग लोक के विषय में। तो वैसे सारे जो वर्णन है वो इतना जटिल जैसे दिखाई पड़ता है बाहरी दृष्टिकोण से, वैसे उनकी तुलना की गई है हमारे पेट के अतुड़ियों के साथ, तो भी बड़ा जटिल दिखता है। और उसके बाद छठा जो स्कंद है उनकी तुलना की गई है वक्षस्थल के साथ, जिसके अंदर हृदय जो है जो मूल जो माना गया है, जिस छठे स्कंद में हमें भक्ति के गुणों का वर्णन दिखाई पड़ता है, तो जा भक्ति जो कि समस्त जो अजामिल के कहानियों के द्वारा ये समझाया जाता है कि किस प्रकार भगवान की हरि नाम वो कितना महान है, इसका वर्णन आता है छठे स्कंद के, जिसकी तुलना की गई है हृदय के साथ। और सात और आठवां स्कंद उनकी तुलना की गई है भुजाओं के साथ, क्योंकि सातवें और आठवें स्कंद में जहां पर दिखाई पड़ता है कि हिरण्यकश्यपु ने कुछ चुराया है और भगवान उनसे लेकर वापस देवलोक को देते हैं, और आठवें स्कंद में जहां पर असुरगण लोग आक्रमण करके स्वर्ग को देवताओं को परास्त करके उनके वस्तुओं को चुरा लेते, फिर भगवान वापस वामन के रूप में आकर उनसे लेकर वापस दे देते हैं, जो लेन देन की जो बातें वो भुजाओं से किया जाता है, तो इसलिए उनकी तुलना की गई है भुजाओं के साथ। और जो बारहवां स्कंद है उनकी तुलना की गई है भगवान के बालों के, नौवां स्कंद जो है उनकी तुलना की गई है भगवान के गले के साथ। तो ये जो गला जो है बड़ा सटीक हो जाता है, तो वो क्या होता है, नौवें स्कंद में हमें दो वंशावली का वर्णन दिखाई पड़ता है, एक सूर्य वंश और चंद्र वंश, वो पूरी तरह वंशावली को एकदम सटीक रूप में वर्णन करते हुए आगे वर्णन करते हैं। और फिर 12वां स्कंद जो है भगवान के केशों के साथ तुलना किया गया है, और 11वां स्कंद जो भगवान के मस्तक के साथ तुलना किया गया, और 10वां स्कंद जो है भगवान के मुखमंडल के मुस्कान के साथ तुलना किया है। तो ऐसे पूरा जो श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान के दिव्य वपु के साथ तुलना किया है। तो जब भी भगवान का दर्शन करते हैं तो दर्शन का आरंभ होता है चरण कमल से, तो कोई सीधे भगवान के मुस्कान को देखना ये इतना उचित नहीं माना जाता। भगवान के मुखमंडल का मुस्कान का दर्शन कहां से? चरण कमल से शुरुआत होता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के जो दशम स्कंद का जो दिव्य लीला जो है इसे अगर अच्छी तरह समझना है तो पहले के सारे बाकी के स्कंद को उसे अच्छी तरह उसके ज्ञान को उसे अच्छी तरह उसे समझना होगा, तब जाकर वो दशम स्कंद के इन दिव्य लीलाओं को अच्छी तरह समझ सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने देखा कि लोग दशम स्कंद पर पहले ही कूद जाते, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक ग्रंथ लिखा जो कि एक कृष्ण लीला, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इस ग्रंथ को लिखकर श्रील प्रभुपाद ने क्या सिद्ध किया? इस ग्रंथ को लिखकर श्रील प्रभुपाद ने जो वास्तविक जिस ज्ञान की आवश्यकता थी उनको उन्होंने उपलब्ध करते हुए उस ग्रंथ का रचना किया, ताकि उनको भगवान के सही कृष्ण तत्व वेदा उसके विषय में जानकारी पहले हो जाए, फिर बाद में लीलाओं की चर्चा की जाए। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब राधा कुंड में जब प्रवचन दे रहे थे श्रीमद् भागवतम के लिए, तो कई संख्या में लोग आकर बैठ गए, कई बाबा जी आकर बैठ गए। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रवचन शुरू किया श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक को लेकर जन्मादि अस्य यथा, और उस श्लोक को लेकर ऐसे शुरुआत किए कि लगातार एक महीने तक 30 दिन तक लगातार उसी शब्द को लेकर उन्होंने प्रवचन किया। कई दिनों तक, कुछ दिनों के बाद तो वहां पर सब बाबा जी गायब हो गए, तो सब आए थे ये आकांक्षा के साथ कि कुछ रासलीला सुनने मिलेगा या कृष्ण की कुछ ऐसी दिव्य लीला सुनाई पड़ेगी, और ऐसे सोचकर आए थे। तो यहां पर वास्तविकता भगवान के इन दिव्य लीलाओं को अगर समझना है तो पहले उसे तत्व को जानना होगा, और जब तत्व को अच्छी तरह समझेंगे तब जाकर इन भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझ पाएंगे। इसलिए कहा गया है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद भी इस बात को कहते हैं कि अगर भगवत गीता जानना है तो पहले उसे यह जानना होगा कि भगवान कौन है। जब तक वह इस बात को नहीं सहमत होगा कि कृष्ण भगवान है, तो भगवत गीता सुनने के बाद भी वो भगवत गीता नहीं समझ पाएगा। जैसे भगवत गीता को सुनने वाले दो व्यक्ति थे, अर्जुन था और साथ में धृतराष्ट्र भी था। अब पूरी भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुना, अर्जुन ने भी सुना, लेकिन किसके मनोभावना बदले? अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन तत्व को जानता था कि कृष्ण भगवान है, इस बात से वह सहमत था। तो यह वास्तविक भगवान के लीलाओं को समझने के लिए पहले इस फॉर्मूला को जानना जरूरी है। जब तक उस फॉर्मूला को नहीं जानेंगे तब तक हम उसे नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे यहां पर इस दिव्य लीलाओं में जहां पर भगवान कृष्ण अपने बाल लीला करते हुए अपनी माताओं को दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं, जो उनकी माता अपने ग्रस्त कार्यों में लगी थी, उसी समय यहां पर भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में वो अनेक जो हानिकारक पशुओं के साथ वो लेन देन कर रहे कृष्ण। तो कृष्ण क्या कर रहे थे? यहां पर कहा गया श्रृंगी, श्रृंगी यानी कि गाय। तो गाय के जो सिंग जो था वो हालांकि नुकसान पहुंचा सकता है बालक को, तो उस सिंह के डर से या कभी बंदरों के बड़े बड़े दांत को देखकर या कुत्ते के बड़े बड़े दांत और पंजे को देखकर उनके साथ खेल करते थे कृष्ण, और कभी कभी तलवार को पकड़ते थे तो कभी अग्नि को स्पर्श करते थे, और ऐसे भगवान कृष्ण इस लीलाओं के द्वारा वो माता यशोदा और रोहिणी माता के मन को आकर्षित करते थे। और जब उन लोग अपने कृष्ण की यह अवस्था देखते तो अपने घर का काम धंधा सब छोड़कर उनकी रक्षा करने चले जाते थे। तो इतने व्याकुल रहते थे अपने कृष्ण की रक्षा के लिए कि वहां पर वर्णन आता है कि यशोदा मैया और रोहिणी माता, अन्य गोपीगण सभी लोग दिव्य आनंद को प्राप्त करते थे। तो वास्तविकता भक्त जो है, भक्त के लिए सुख वास्तविक क्या है? हालांकि यहां पर व्याकुल होने के बाद, चिंतित होने के बावजूद भी उन्हें वो सुख और आनंद प्राप्त होता था। तो सुख और आनंद क्या है, इस दो विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक तो इस वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होता है, और दूसरा है कि किस प्रकार व्यक्ति कृष्ण में अपने मन को आवेश कर देता है, तो उनकी क्या स्थिति है। तो इन दोनों विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। तो पहले चैतन्य चरितामृत में जहां पर वर्णन आता है कि वास्तविक सुख कैसे मिलता है, तो सुख की प्राप्ति कैसे होती है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से रवाना होने के लिए अन्य भक्तों का अनुमति लेकर जब जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो वो चाह रहे थे कि मैं चले जाऊं, मगर गदाधर कहने लगे कि मैं भी साथ में आऊंगा। तो गदाधर निवेदन करने लगे कि हे महाप्रभु, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। तो वो भी कहने लगे कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि देखो गदाधर, तुम्हारा यहां पर जो सेवा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाना। वो समझाने लगे, वो कहने लगे, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी ये तुम्हारा उद्देश्य, से सिद्ध हैला छाड़ी आयला दूरदेश। अपने प्रतिज्ञा को और अपना सेवा, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी, ये दो वस्तुओं को जीवन में कभी नहीं त्यागना है, तो तुम यहीं रहो। तुम्हारा प्रतिज्ञा क्या है? तो उन्होंने कहा गदाधर को कि तुम्हारा प्रतिज्ञा ये कि तुम जगन्नाथपुरी में क्षेत्र सन्यासी के रूप में रहो, और दूसरा साथ में तुम्हारा सेवा है कि तुम टोटा गोपीनाथ की सेवा करो, ये तुम्हारे लिए दो प्रधान वस्तु है। तब उस समय गदाधर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, आप थोड़ा सा आगे चलो, मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा और दोनों जन मिल लेंगे और फिर साथ में जाएंगे वृंदावन। महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया। महाप्रभु फिर उस समय उनको फटकारने लगे, प्रभुला की धर्म कर्म छाड़े भक्त गण, भक्त धर्म हानि प्रभु नहाय सहना। महाप्रभु कहने लगे कि तुम्हारा ये जो धर्म है, एक है सेवा, दूसरा है प्रतिज्ञा, इस दो को तुम्हें कभी जीवन में नहीं त्यागना। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि प्रभु लागी धर्म कर्म, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते हैं कि महाप्रभु को वो क्षण कभी भी पसंद नहीं आएगा कि कोई अगर अपने कर्म, अपने प्रतिज्ञा को, अपनी सेवा को छोड़कर चला जाता है किधर और घूमने फिरने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब उपदेशामृत ग्रंथ लिखे थे, तो उस समय जो उपदेशामृत के अनेक अनेक श्लोक का जो अंतिम श्लोक था, राधा कुंड की महिमा का वर्णन, ये राधा कुंड की महिमा का इतने उसमें वर्णन किया गया है कि ये जब पूरे जगह पर इसका जब वितरण किया गया था, तब उस समय इस्कॉन के संस्था में कई रहने वाले भक्त लोग ने भी यह विचार किया कि बस हमें पता लग गया जीवन का लक्ष्य राधा कुंड है, तो वो लोग भी अपने अपने सेवा प्रतिज्ञा सब छोड़कर चले जाते थे राधा कुंड में। अब जब राधा कुंड में चले गए तो ये कंप्लेन मिला श्रील प्रभुपाद जी को, तो श्रील प्रभुपाद जी को जब कंप्लेन मिला तो प्रभुपाद जी ने तुरंत ही फटकारने लगे, बोले कि जो 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 अपने सेवा में लगे वापस चले जाओ, ये जो विचार जो है ये वास्तविक में गलत विचार है, क्योंकि सबसे पहला धर्म होता है एक साधक भक्त का और वो है अपनी सेवा और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना, और इसी में ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको फटकार कर जब निकल पड़े, तो जब वहां से गए तो बंगाल की ओर उन्हें घुमा दिया, और फिर वहां पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से भेंट हुआ रामकेली गांव में। तो वहां पर उनको कहा गया, सनातन गोस्वामी ने कहा महाप्रभु को कि ये महाप्रभु आप इतने लोगों को लेकर जा रहे वृंदावन में, तो मजाक नहीं आएगा, तो बेहतर होगा कि आप अकेले जाइए, तब कुछ ही भक्तों के साथ जाएंगे, तब वास्तविक वृंदावन का आनंद प्राप्त होगा। तो इस बात को सुनकर महाप्रभु वापस लौट आए, और जब वापस लौट आए तो सभी लोग ने यह सोचा कि महाप्रभु वृंदावन दर्शन करके आ गए। तो जब वापस आए तो उन लोगों ने कहा कि महाप्रभु आपने दर्शन कर लिया? महाप्रभु ने कहा नहीं। बोले क्यों? तो महाप्रभु कहते हैं गदाधर छाड़ी गुण इयो दुख पाईला से हेतु वृंदावन आए थे नर लिया। वो कहने लगे कि गदाधर के मन को मैंने ठेस पहुंचाया और इसीलिए मैंने उनके मन को ठेस पहुंचाने के कारण मैं वृंदावन नहीं जा पाया और इस कारण से मैं वापस लौट आया। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि किस प्रकार भक्तों के हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, यही वास्तविक में आनंद प्राप्त होने का मार्ग है। तो सबसे बड़ा जो साधक भक्त के लिए जो खुशी की जो बात है और वो क्या है, भक्तों के संगति में रहते हुए भगवान की सेवा करना। इसी बात को जब श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से जब प्रश्न करते हैं कि हे रामानंद राय बताइए कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, तो क्या कहने लगे, दुख मदे कौन दुख है गुरु तार, सबसे बड़ा दुख क्या है एक जीव के लिए, तो क्या कहने लगे रामानंद राय, कृष्ण भक्त वीरा बिना दुख ना ही देखी पा रहा। वो कहने लगे कि अपने भक्तों के विरह को छोड़कर जाना या उनके विरह को सहना, इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो वास्तविक सबसे आनंद की बात क्या है कि भगवान के और भक्तों के संगति में रहना, ये सबसे बड़े आनंद की बात है। तो यहां पर यशोदा मैया अन्य गोपीगण सभी लोग भक्तों के समूह में उपस्थित है और साथ साथ में कृष्ण के दिव्य लीला का दर्शन कर रहे, तो स्वाभाविक है कि उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और ऐसे दिव्य आनंद को रसास्वादन कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा था कि यहां पर यशोदा मैया अपने घरेलू कार्य में लगी थी, लेकिन जब उनका ध्यान जब कृष्ण की ओर गया तो कृष्ण जो हानिकारक पशुओं के साथ जब खेल खेल रहे, तो ये अवस्था देखकर बड़ी चिंतित हो गई। तो अपने घर के सारे काम धंधे को छोड़कर वो दौड़ी सीधे कृष्ण की रक्षा के लिए। तो यहां पर यशोदा मैया अन्य गोपीगण हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई दे रहे कि वो लोग अपने अपने घर के काम कर रहे, लेकिन वास्तविकता उनका मन पूरी तरह कृष्ण में ही लगा था। तो भले ही व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखा जाता है कि उसका मन कहां पर है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंद में जहां पर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की जो कथा आती है, तो उस समय ऐसी घटना घटी कि अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को आमंत्रण किया था कि अब द्वादशी का पारण तोड़ने के लिए उनको आमंत्रण किए थे कि आप आइएगा, मगर पारण टूटने के समय में दुर्वासा मुनि पहुंच नहीं पाए और समय बीतता जा रहा था, तो पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हे राजन, अब उपास पारण तोड़ना जरूरी है। तब उन्होंने जब अपना पारण तोड़ने जैसे ही गए, उतने में दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। तो दुर्वासा मुनि जैसे ही आए तो बड़े क्रोधित हो गए, उन्हें अपमानित महसूस हुआ। अब यहां पर दिखाई क्या पड़ रहा है कि एक राजा, उनकी क्या अवस्था थी, तो उनके विषय में कहते हैं कि गृहेशु दारेशु सुष्टेशु बंधेशु द्विज उत्तम साधन वाजी वस्तुषु। अब उनके पास स्वर्ण रत्न से बने हुए मालाएं और अनेक अनेक घोड़े गाड़ी, अनेक अनेक हाथी, अनेक अनेक सेनाएं गण से पूरी तरह यहां पर अम्बरीश महाराज इनके राज्य कर रहे थे। दिखाई पड़ रहा था कि अम्बरीश महाराज बड़े राजा है, बड़े आसक्त है विषयों में, और दुर्वासा मुनि उनकी अवस्था ऐसे देखकर प्रतीत हो रहा है कि सबसे बड़े विरक्त व्यक्ति है। तो बाहर से दिखाई पड़ रहा है कि यह बड़े विरक्त व्यक्ति है, मगर अम्बरीश महाराज बड़े आसक्त है, मगर वास्तविकता यह सत्य नहीं था, सच्चाई कुछ और था। क्योंकि जब तक वहां पर उस स्थान में जब तक सुदर्शन नहीं आएगा, तब तक वास्तविक दर्शन नहीं होगा। सुदर्शन यानि जो अति उत्तम दर्शन देता है। तो जैसे ही वहां पर उसी पिक्चर में जब सुदर्शन का एंट्री हुआ, तो सुदर्शन का एंट्री होते ही पता लग गया कि कौन क्या है, और दुर्वासा मुनि जिसका वास्तविक दूसरा अर्थ इस प्रकार बनता है, दुर्वासा, वासा यानी कि वस्त्र, दुर यानी कि ठीक से नहीं, जो ठीक से वस्त्र नहीं डालता है, उसे कहा गया दुर्वासा। अब दुर्वासा मुनि के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं, इतना बड़ा विरक्त दिखाई देते हैं, मगर अम्बरीश महाराज के सामने उनकी क्या अवस्था हो गई कि दुर्वासा मुनि पूरी तरह फ्लैट हो गए, अम्बरीश महाराज के चरणों पे गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। किस लिए? कि मुझसे गलती हो गई। तो यहां पर सुदर्शन आने के पहले दुर्वासा मुनि सबसे बड़े विरक्त व्यक्ति दिख रहे थे, लेकिन वास्तविक में विरक्त व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अम्बरीश महाराज। तो भले ही अपने वो तरह तरह के गृहस्थ घरेलू कार्य में लगे हुए थे, लेकिन वैसे समय पर भी उनका चित्त जो था वो कृष्ण में लगा था। तो ये महत्वपूर्ण यहां पर बात दिखाई पड़ रही है। तो जो भगवान के जो भक्त जो होते हैं, उनकी स्थितियों को समझना है तो उनके मन की भावनाओं को समझकर जान सकते कि वास्तविकता में इनकी क्या अवस्था है, कि उनका मन कहां पर है। जैसे श्री संप्रदाय में जहां पर रामानुजाचार्य के कई शिष्य थे, कुछ ग्रस्त थे, कुछ सन्यासी थे, तो उसमें वर्णन आता है कि जितने भी सन्यासी लोग थे, इन लोगों के अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार क्या आया कि हम सबसे बड़े विरक्त व्यक्ति है सन्यासियों के अंदर। और रामानुजाचार्य को यह बात समझ में आ गया, तो रामानुजाचार्य ने इन लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक युक्ति रची, और ये अपने निकट के दो भक्तों को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें दो काम करना है, एक तो सन्यास आश्रम में जाकर जितने भी उनके कपड़े सब उलट सुलट रख देना, और दूसरा यह है कि मेरा एक भक्त जो ग्रस्त है उसके घर पर घुसकर तुम्हें चोरी करना है। अब ये दो आदेश दे दिए थे। तो यहां पर इन लोग आए थे चोरी करने के लिए एक गृहस्थी व्यक्ति के घर पर, और जब चोरी करने आए तब उस समय उनकी पत्नी सोई थी, मगर पति बाहर गए थे काम के कारण, आने के लिए देरी हो रहा था। तब उस समय ये दोनों जन रामानुजाचार्य के दोनों शिष्य, उनकी पत्नी ने पूरे स्वर्ण आभूषणों को सजा ढजा कर पहनी थी, तो उनसे एक एक वस्तुओं को चोरी करने लगे। तो उंगलियों के अंगूठी को निकाले, कान के बालियां निकाले, इस प्रकार चूड़िया वगैरह जितने भी निकाले, तो निकालने के बाद जैसी वो घूमी तो तुरंत ही लोग डर कर भाग गए और छुप गए दरवाजा के पीछे। तब इतने में उनके पतिदेव के घंटी का आवाज आया, तो वो जाकर दरवाजा खोली तो पति ने देखा ये अवस्था। पति ने पूछा ये क्या हो गया, नया फैशन, एक साइड गहना नहीं है दूसरे साइड गहना है। तो बोले अरे पतिदेव जी, बात ऐसी है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आश्रम में कुछ पैसे की कमी पड़ गई है, हमारे गुरु महाराज की कुछ अवस्था खराब दिखाई पड़ रही है। बोले क्यों? बोले गुरु महाराज के शिष्यगण आए थे कुछ चोरी करने, तो मेरे गहनों को चोरी कर रहे थे, और जब मैंने ये सोची कि मैं एक साइड का गहना चोरी कर लिया दूसरे साइड का भी चोरी करने, तो ऐसे सोचकर मैं पलट रही थी, उन लोग डर के भाग गए। अब यह सुनकर ये दोनों शिष्य वहां से निकलकर वापस आए रामानुजाचार्य के पास। अब रामानुजाचार्य ने दूसरे दिन सभी शिष्यों को एक साथ बिठा दिया, सन्यासी गृहस्थी को सबको, फिर अन्य कहने लगे कि मैंने तुम्हें दो काम करने को कहा था, तो तुमने ग्रस्त आश्रम में गए थे तो क्या हुआ? तो सबके सामने वो बता रहे कि हम गए थे ग्रस्त आश्रम में चोरी करने, मगर वो लोग अपने आप को धिक्कारने लगे कि ज्यादा चोरी करने नहीं दिया, और इस तरह उन लोगों को पछतावा हो रहा था, और पति तो पत्नी को फटकार रहे थे। बोला अच्छा ऐसे हो गया, और दूसरा संन्यास आश्रम में क्या हुआ? बोले संन्यास आश्रम में तो सुबह सुबह लोग मंगल आरती के लिए उठने के पहले ही अपने कोपिन के लिए झगड़ा कर रहे थे सब कि तुमने मेरा चोरी किया, तुमने मेरा चोरी किया। अब यहां पर ये सब सुनकर जितने भी सन्यासी थे सबका मुंडी नीचे हो गया, और रामानुजाचार्य ने उनके अहंकार को ध्वंस किया ये समझाकर कि देखिए बाहरी दृष्टिकोण से कुछ देखा नहीं जाता, वास्तविक मन कहां पर है वो महत्वपूर्ण है। तो मन अगर कृष्ण में लगा हुआ है तो वास्तविक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और वैसे भले ही कोई ग्रस्त आश्रम में भी रहता होगा तो भी उसे कम नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनका मन कृष्ण में अगर लगा हुआ है तो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी माना गया है। और वैसे यहां पर यशोदा मैया इतने घरेलू काम में लगी है, दिखाई पड़ रहा है बाहर से कि कितने व्यस्त है घर के काम में, लेकिन मन पूरी तरह कृष्ण में आवेश था, और ये वास्तविकता में उनका नित्य विरक्ति का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। और